السلام علیکم، یہ پارٹ 9 ہے ناول ڈارک فیس۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کنول خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 9۔ اوکے، فوری حرکت میں آ جاؤ اور سنو، کسی پوچھ گچھ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی فوری ہلاکت چاہیے، لارڈ نے کہا۔ یس لارڈ، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو لارڈ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ایک تو وہ خورن سے مکمل طور پر محفوظ ہو چکا تھا، اور دوسرا اسے یقین تھا کہ اسٹون انتہائی تیز رفتار ایجنٹ ہے، اس لیے وہ لامحالہ ان کا خاتمہ کر لے گا۔ اسٹون لمبے قد اور ورزشی جسم کا مالک تھا، وہ طویل عرصے تک گریٹ لینڈ کی ایک سرکاری ایجنسی سے وابستہ رہا تھا، اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ڈارک فیس کو جوائن کر لیا تھا۔ یہاں سے انتہائی گران قدر معاوضہ اور تمام ممکنہ سہولیات مہیا تھی۔ اس کا علیحدہ سیکشن تھا جس میں 10 افراد تھے، اور اسٹون اس سیکشن کا انچارج تھا۔ وہ چونکہ انتہائی منجھا ہوا تجربے کار ایجنٹ تھا، اس لیے اس کے کارناموں کی ایک طویل فہرست تھی۔ اس لیے ڈارک فیس کا چیف لارڈ بھی نہ صرف اس کی قدر کرتا تھا، بلکہ مشکل اور الجھے ہوئے مشن اس کے حوالے کیے جاتے تھے، اور اسٹون کا ریکارڈ تھا کہ وہ آج تک کسی مشن میں ناکام نہ ہوا تھا۔ نارمن انٹرنیشنل انٹرپرائزز کا آفس اسٹار بزنس پلازا کی دوسری منزل پر تھا، اور اسٹون اس وقت اس پلازا کے مین گیٹ کے سامنے سڑک کی دوسری طرف بنی ہوئی پارکنگ میں موجود کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کار کا رخ موڑ کر سڑک اور سامنے پلازا کے مین گیٹ کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر ایک نوجوان سارجر بیٹھا ہوا تھا۔ کار کے ڈیش بورڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا باکس رکھا ہوا تھا، اس باکس کی چوڑائی کی طرف باقاعدہ چھوٹی سی اسکرین تھی جس پر ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا، اور ایک شیشے کے دروازے کے سامنے بیزوی کاؤنٹر کے پیچھے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی جبکہ کمرہ خالی تھا۔ لڑکی کے سامنے کاؤنٹر پر ایک فون رکھا ہوا تھا، یہ نارمن کا آفس تھا اور یہ لڑکی اس کی سیکرٹری تھی۔ نارمن چونکہ ایکڈیمیا گیا ہوا تھا، اس لیے یہ لڑکی فارغ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسٹون نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے ایک مخصوص آلہ اس کمرے میں پہنچا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس باکس کی اسکرین پر سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹون کے باقی آدمی بھی اسی طرح کاروں میں سوار ادھر ادھر موجود تھے۔ باس، یہ لوگ کس وقت آئیں گے؟ عقبی سیٹ پر موجود سارجر نے پوچھا۔ دیکھو، اسٹون نے جواب دیا، اور پھر چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو اسٹون بے اختیار چونک پڑا۔ دروازے سے ایک ایکریمین مرد اور ایک عورت داخل ہوئی۔ او ہو، یہ عمران ہے، وہی قد و قامت، وہی انداز، اسٹون نے چونک کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، سیکرٹری نے انہیں کاؤنٹر کی طرف آتے دیکھ کر کہا۔ اس کی آواز باکس میں سے نکل رہی تھی۔ مسٹر نارمن سے ملاقات کرنی ہے، میرا نام لارڈ بیکر ہے، اس آدمی نے ایکریمین لہجے میں کہا۔ وہ تو ایکریمیا کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور کچھ معلوم نہیں کہ ان کی واپسی کب ہوگی، سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میری بات ہوئی ہے ان سے، آنے والے نے کہا۔ وہ ایک گھنٹے پہلے یہاں سے گئے ہیں، سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر نارمن صاحب موجود نہیں ہے تو آپ ہمارا رابطہ لارڈ سے کرا دیں، لارڈ بیکر نے کہا۔ लॉर्ड वो कौन है, मैं समझी नहीं, सेक्रेटरी ने हैर भरे लहजे में कहा। तो इस आदमी ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। आपका लहजा बता रहा है कि आप वाकई लॉर्ड को नहीं जानती। बहरहाल नॉर्मन साहब की रहायशगाह कहाँ है, लॉर्ड बेकर ने कहा। नॉर्मन पैलेस थर्ड एवेन्यू, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। इनका फोन नंबर, मेरा मतलब है रिहायशगाह का फोन नंबर, आने वाले ने कहा। तो सेक्रेटरी ने नंबर बता दिया। वहाँ फोन करके मालूम करो कि वो अभी रिहायशगाह पर मौजूद हैं या नहीं, आने वाले ने कहा। मुझे वहाँ फोन करने की इजाजत नहीं, सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं खुद कर लेता हूँ, लॉर्ड बेकर ने कहा और हाथ बढ़ाकर इसने फोन का रुख अपनी तरफ किया और फिर रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नॉर्मन पेरिस, रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। फोन से निकलने वाली हल्की सी आवाज भी इस डब्बे से निकल रही थी। इससे मालूम होता था कि ये आलू जो ये सब कुछ नष्ट कर रहा है किस कदर ताकतवर है। मिस्टर नॉर्मन से बात कराएं, मैं लॉर्ड बेकर बोल रहा हूँ, आने वाले ने कहा। वो तो ऑफिस गए हुए हैं, अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई, दूसरी तरफ से कहा गया। यहाँ ऑफिस में तो बताया जा रहा है कि वो एक्रीमिया गए हैं, वो एक घंटा पहले उठे हैं यहाँ से, लॉर्ड बेकर ने कहा। इनका अपना तैयारा है इसलिए वो जा सकते हैं जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। तो लॉर्ड बेकर ने कैडल दबाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सेक्रेटरी खामोश बैठी इन्हें देख रही थी। इंक्वायरी प्लीज, रास्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। एयरपोर्ट मैनेजर का नंबर दें, लॉर्ड बेकर ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। लॉर्ड ने एक बार फिर कैडल दबाया और फिर नंबर प्रेस कर दिए। एयरपोर्ट मैनेजर ऑफिस, एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। लॉर्ड बेकर बोल रहा हूँ, मैनेजर साहब से बात कराओ, लॉर्ड बेकर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस, एयरपोर्ट मैनेजर मार्टन बोल रहा हूँ, एक भारी आवाज सुनाई दी। लॉर्ड बेकर बोल रहा हूँ, मैंने नॉर्मन इंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब नॉर्मन साहब से मुलाकात करनी थी, लेकिन यहाँ से पता चला है कि वो एक घंटा पहले ऑफिस से एक्रीमिया जाने के लिए उठ गए हैं, वो अपनी रहायशगाह पर भी नहीं पहुँचे। आप ये मालूम करके बताएं कि इनका तैयारा एयरपोर्ट पर मौजूद है या नहीं, लॉर्ड बेकर ने कहा। इनका जाती तैयारा मौजूद है जनाब, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या आपको यकीन है, लॉर्ड बेकर ने कहा। यस सर, चूंकि मेरी तरफ से बाकायदा तहरीरी इजाजत के बगैर कोई प्राइवेट तैयारा फ्लाई ही नहीं कर सकता और गुज़िश्ता एक हफ्ते से मैंने किसी जाती तैयारे को इजाजत नहीं दी, एयरपोर्ट मैनेजर ने कहा। अगर हम एयरपोर्ट पर इनसे मुलाकात करना चाहें तो हमें कहाँ इन्हें ट्रेस करना होगा, लॉर्ड बेकर ने कहा। PF1 अलैदा सेक्शन है जनाब वहाँ, मैनेजर ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू, लॉर्ड बेकर ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। थैंक यू, अब हम खुद ही इनसे एयरपोर्ट पर मुलाकात कर लेंगे, लॉर्ड बेकर ने सेक्रेटरी से कहा और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद कमरा खाली हो गया तो स्टोन ने जेब से एक छोटा सा फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकाला और इसे ऑन कर दिया। हेलो, स्टोन कॉलिंग, ओवर, स्टोन ने कहा। यस, फास्टर अटेंडिंग यू, ओवर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। इमरान और इसके साथी औरत का हुलिया सुन लो, हो सकता है कि इनके और साथी भी हों। बहरहाल अब तुमने इन्हें नजरों से ओझल नहीं होने देना, इनकी कार पर 3X फाइल कर देना, ओवर, स्टोन ने कहा और इसके साथ ही इसने लॉर्ड बेकर, ओवर, इसके साथ ही औरत का हुलिया तफसील से बता दिया। ओ यस सर, ये मर्द और औरत हमारे सामने अंदर गए हैं, इनके साथ इनके 3 मर्द साथी और भी हैं, ये सब एक ही कार में यहाँ पहुँचे हैं। ओवर, फास्टर ने जवाब दिया। ओके, इनकी कार पर 3x फायर कर दो और खुद पीछे हट जाओ। 3x फायर करके तुमने मुझे रिपोर्ट देनी है। ओवर, स्टोन ने कहा। यस बॉस, ओवर, फास्टर ने जवाब दिया। तो स्टोन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड पर पड़े हुए इस बॉक्स का कोना दबाया तो स्क्रीन ऑफ हो गई। आपने इन्हें फौरी हलाक करना था बॉस, सार्जन ने कहा। ऐसा ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन्हें इस अंदाज में हलाक किया जाए कि इनमें से किसी के बच निकलने का कोई स्कोप ना रह सके। इन्होंने एयरपोर्ट पहुँचना है और एयरपोर्ट से पहले सड़क जहाँ मोड़ काटती है वहाँ इन पर मिसाइल फायर हो सकता है, स्टोन ने कहा। और इसके साथ इसने कार स्टार्ट करके इसे आगे बढ़ाया और फिर सड़क पर आकर वो दाएं तरफ मुड़ गया। इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासरात नुमाया थे, क्योंकि अब इमरान और इसके साथियों की मौत इसके ख्याल के मुताबिक यकीनी हो चुकी थी। इमरान अपने साथियों समेत कार में सवार सड़क पर आगे बढ़ा चला जा रहा था। ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद था, जबकि साइड सीट पर जूलिया और अकबी सीट पर सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर बैठे हुए थे। वो स्टार बिजनेस प्लाजा से एयरपोर्ट जा रहे थे। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि नॉर्मन एयरपोर्ट नहीं पहुंचेगा, वो अंडरग्राउंड हो गया है, सफदर ने कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो, जूलिया ने चौंक कर कहा। एयरपोर्ट देखने, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या मतलब, क्या तुम मजाक कर रहे हो, जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन फिर इसके पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक इसकी जेब से टू टू की आवाजें निकलने लग गईं। इसने कार को एक साइड पे करके रोक दिया और फिर जेब से ट्रांसमीटर निकालकर इसने इसका बटन ऑन कर दिया। रिचर्ड कॉलिंग, ओवर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस माइकल अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है, ओवर, इमरान ने कहा। पिछले रोड पर आपकी कार पर 3x फायर किया गया है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। वो तो मैंने चेक कर लिया था, लेकिन इस ग्रुप का बॉस कौन है, ओवर, इमरान ने कहा। ट्रांसमीटर पर किसी स्टोन को कॉल की गई है और ये स्टोन एयरपोर्ट से पहले वेरान जगह पर एक मोड़ पर मौजूद है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तुमने कॉल रिसीव करने वाले को तो चेक किया होगा, ओवर, इमरान ने कहा। हाँ, जहाँ आप मौजूद है यहाँ से एयरपोर्ट जाते हुए तीसरे मोड़ पर ब्राउन कलर की नए मॉडल की कार मौजूद है, इस कार में स्टोन ने कॉल रिसीव की थी, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। 3x फायर करने वाले पिछले मोड़ के बाद नजर नहीं आए, ओवर, इमरान ने कहा। वो दाएं तरफ मुड़कर अब चक्कर लगाकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, थैंक यू, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में डाल लिया। ये कौन था और तुमने कब इससे रास्ता किया, मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई तुम्हारी, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मर्द हर बात खवातीन के सामने करते रहे तो फिर जी लिया उन्होंने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने कार स्टार्ट कर दी। इमरान साहब, आपने इशारा तक नहीं किया था, कौन है ये स्टोन और कैसे आपको ये सब कुछ पता चला, सफदर ने कहा। ये लॉर्ड का कोई ग्रुप है, जाहिर है जिगर की मौत का इल्म इसे हो गया, इसलिए वो फौरन अंडरग्राउंड हो गया। इसका तैयारा एयरपोर्ट पर मौजूद है, रिहाइश का पर भी वो नहीं है, इसका मतलब है कि वो कहीं छुप गया है और इस वक्त तक वो सामने नहीं आएगा जब तक हम हलाक ना हो जाएं। और ये स्टोन ग्रुप इसीलिए सामने लाया गया है, इस स्टोन ग्रुप ने اپنے طور پر واقعی انتہائی کامیاب ٹریپ بچھایا تھا کہ انہوں نے نارمن کی سیکیورٹی کے کمرے میں ایس بی او ایلیون ہینڈرڈ لگایا ہوا تھا، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ لگانے والے نے جلدی کی اور اسے کاؤنٹر کی سائڈ پر اس طرح لگا دیا جیسے سوئچ بورڈ لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میں نے اسے چیک کر لیا۔ یہ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ اس کمرے میں ہونے والی معمولی سی آواز بھی کافی فاصلے پر نشر کر دیتا ہے، اور اس کے ریسیونگ آلے کی اسکرین پر تمام منظر بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ نارمن نے ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے کسی گروپ کو آگے بڑھایا ہے، اور اس سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ نارمن ہی ڈارک فیس کا لارڈ ہے اور لا محالہ اس کا رابطہ اب ستون سے ہوگا۔ اس لیے ستون سے ہم اس کا ٹھکانہ معلوم کر سکتے ہیں، اور چونکہ مجھے پہلے سے اس بات کا خدشہ تھا اس لیے میں نے اسے چیک کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ ٹاور پر کام کرنے والے ایک آدمی سے ایک دوسرے آدمی کے ذریعے بات کر لی۔ اس ٹاور کے ذریعے اس پورے ایریے میں نہ صرف کاروں کی نقل و حرکت چیک کی جاتی ہے بلکہ ان کے پاس ایسے آلات بھی ہیں کہ وہ کاروں میں ہونے والی گفتگو بھی سن سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ ساری رپورٹ دی ہے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تو مستقل تمہارے ساتھ ہوں، میرے سامنے تو تم نے کوئی بات نہیں کی۔ جولیا ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ رہائش گاہ میں جب تم سب میک اپ میں مصروف تھے میں نے فون پر یہ ساری پلاننگ کر لی تھی، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب یہ 3S کیا ہوتا ہے؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیپسول ہوتا ہے جو کار کی باڈی کے ساتھ چپک جاتا ہے، اس میں سے ریز نکلتی ہے جو روشنی میں ستاروں کی طرح چمکتی ہے۔ اب جب ہماری کار اسٹون کے سامنے پہنچے گی تو وہ دور سے ہی چمک دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہی ہماری کار ہے، پھر ایک ہی میزائل ہم سب کے لیے کافی ہوگا، عمران نے مزے لے کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن انہوں نے فوری ہم پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ 3S کی جگہ میزائل بھی تو فائر کر سکتے تھے، جولیا نے کہا۔ ٹرانسپورٹ ٹاور سے وہ کیسے بچ سکتے تھے؟ ویران جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ سڑک سے کافی فاصلے سے میزائل فائر کیا جائے۔ ٹاور کی مشینری صرف سڑک اور اس کے قریبی علاقوں کو ہی چیک کرتی ہے، جبکہ موڑ کی وجہ سے کافی فاصلے سے بھی ہم پر میزائل فائر کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح وہ ٹاور چیکنگ سے بچ سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اب بھی تو ٹاور نے انہیں چیک کیا ہے، جولیا نے کہا۔ اب تو خصوصی طور پر چیکنگ کی گئی ہوگی، عمران نے جواب دیا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے کہا۔ اس موڑ سے پہلے ہم کار سائڈ سے اندر لے جا کر روک دیں گے، اور پھر پیدل چکر کاٹ کر عقبی طرف سے جا کر اس ستون کو کور کر لیں گے، عمران نے کہا۔ یہ کام آپ ہمارے ذمہ لگا دیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اور جولیا کار میں بیٹھ کر ہی رانجھا پڑیں گے، تم مشن مکمل کر لینا، عمران نے کہا۔ کیا پڑھیں گے؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ جس طرح ہر تعلیم کے لیے نصاب ہوتا ہے جسے پڑھ کر امتحان دینا پڑتا ہے اور امتحان میں پاس ہونے پر ڈگری ملتی ہے، اسی طرح عاشقی کا بھی نصاب ہوتا ہے جس میں ہیر رانجھا، لیلا مجنو، سسی پنو اور اس جیسے بے شمار قصے ہوتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں صفدر کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ایک لکھ تنویر نے غصے لہجے میں کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں اب بہن بھائیوں کی گفتگو پر تو کوئی ڈگری نہیں ملتی، عمران نے کہا، تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے، اور پھر تھوڑی دیر بعد इमरान ने कार को साइड पर ले जाना शुरू कर दी। साइड वीरान थी और वहाँ झाड़ियाँ और दरख्त कसर से थे। इमरान ने कार आगे ले जाकर दरख्तों के एक झुंड के अंदर मोड़ दी तो अकबी सीट पर बैठे हुए कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर तीनों नीचे उतरे और तेजी से आगे बढ़ते चले गए, जबकि इमरान भी कार से नीचे उतर आया था क्योंकि इसने कार की बड़ी लाइटें बंद करने के साथ साथ कार की अंदरूनी लाइट भी बंद कर दी थी। इस तरह अंधेरे में वो जूलिया के साथ कार के अंदर बैठना शायस्तगी के खिलाफ समझता था। चल नमो बात दूसरी तरफ से जूलिया भी नीचे उतर आई। क्या इस टून से मालूम हो जाएगा कि नारमन कहाँ है, जूलिया ने कहा। इस टून ने बहरहाल रिपोर्ट तो इसे देनी होगी, इसलिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। नारमन अपने ऑफिस में मौजूद था। इसे स्टोन की तरफ से तफसीली रिपोर्ट मिल चुकी थी कि किस तरह इमरान लॉर्ड बेकर के रूप में आया और फिर इसने कहां कहां फोन करके मालूमात हासिल कर ली और अब स्टोन ने किस तरह इसे हलाक करने के लिए ट्रैप बिछाया है। तो वो पूरी तरह मुतमईन हो गया कि अब इमरान और इसके साथी किसी तरह भी हलाक होने से ना बच सकेंगे, इसलिए अब इसने पूरी इमारत को हाई अलर्ट रखना फजूल समझा और उठकर साइड रूम में मौजूद मशीन को ऑफ करके इस पर कवर डाल दिया था और फिर इसने फोन पर जेरी को कॉल करके इसे ब्लैक कॉफी लाने का कह दिया था क्योंकि वो शराब बेहद कम पीता था, अलबत्ता ब्लैक कॉफी पीने का शौकीन था। थोड़ी देर बाद जेरी ने ब्लैक कॉफी की प्याली इसके सामने रख दी और वापस चले गया। इस बार इस धात के लिए खासी परेशानी उठाना पड़ी है, लेकिन बहरहाल अब इसकी पूरी कीमत वसूल की जाएगी। नारमन ने कॉफी सिप करते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा और फिर अभी इसने कॉफी खत्म ही की थी कि मेज पर मौजूद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकलने लगी। तो इसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाया और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, स्टोन कॉलिंग लॉर्ड, ओवर। दूसरी तरफ से स्टोन की आवाज सुनाई दी। यस लॉर्ड अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है, ओवर, लॉर्ड ने कहा। लॉर्ड, पाकिस्तान एजेंटों के परखचे उड़ा दिए गए हैं, ओवर। दूसरी तरफ से स्टोन की मुसर्रत भरी आवाज सुनाई दी। लहजा फाथाना था। ओ गुड शो, तफसील बताओ, ओवर, नॉर्मन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से स्टोन ने तफसील बता दी कि इमरान की कार पर 3S फायर कर दिया गया था और फिर ये कार जैसे ही मोड़ पर पहुंची इस पर मिसाइल फायर कर दिया गया और कार के परखचे उड़ गए। क्या तुमने इत्मीनान कर लिया था कि इस कार में वो सब मौजूद थे और सब हलाक हो गए हैं, ओवर, नारमन ने कहा। यस लॉर्ड, एक औरत और 4 मर्द इस कार में सवार थे और ये 5 ही खत्म हो गए हैं, ओवर, स्टोन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुम्हें इसका खुसूसी इनाम दिया जाएगा, ओवर एंड ऑल, नारमन ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे वापस मेज पर रख दिया और फिर इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस करके इसने जेरी को कॉल कर ली। थोड़ी देर बाद जेरी ऑफिस में दाखिल हुई। यस सर, जेरी ने अंदर दाखिल होकर मौदबाना लहजे में कहा। जेरी, आज रात मैं यहीं रहूंगा, मैं नैन्सी को यहाँ कॉल कर रहा हूँ, तुमने तमाम इंतजाम करने हैं, नारमन ने कहा। हुकुम की तामील होगी जनाब, जेरी ने जवाब दिया। शराब का कोटा मौजूद है या नहीं, नारमन ने पूछा। मौजूद है जनाब, आपका भी और मैडम नैन्सी जो शराब पीती हैं, वो भी मौजूद है, जेरी ने मौदबाना लहजे में कहा। ओके जाओ और खाने वगैरह का अच्छा इंतजाम करो, नॉर्मन ने कहा। और इसके साथ ही इसने कोट की अंदरूनी जेब से भारी मालियत की करेंसी नोटों की गड्डी निकालकर जेरी की तरफ बढ़ा दी। जो खर्च आए वो कर लो, बाकी तुम्हारा इनाम, नॉर्मन ने बड़े शहाना अंदाज में कहा। शश शश शुक्रिया जनाब, जेरी ने मुसर्रत से कांपते हुए लहजे में कहा। और इसके साथ ही इसने सलाम किया और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। इन शैतानों की मौत पर मुझे इस कदर खुशी हो रही है कि मेरा दिल चाहता है कि पूरे ग्रेट लैंड के हर आदमी को दौलत से लाद दूं, नॉर्मन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वीआईपी क्लब रास्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। नैन्सी से बात कराओ, मैं नॉर्मन बोल रहा हूँ, नॉर्मन ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, नैन्सी बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक मुतर्रनम नुस्वानी आवाज सुनाई दी। नॉर्मन बोल रहा हूँ नैन्सी, नॉर्मन ने बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। ओ आप, वैसे आज कैसे आपको नैन्सी की याद आ गई? आप तो मुझे भूल गए थे, दूसरी तरफ से शिकायत भरे लहजे में कहा गया। तुम भूलने की चीज तो नहीं हो, बस कारोबारी मसरूफियत की वजह से तुमसे राब्ता नहीं हो सका, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर वेस्टर्न कॉलोनी की कोठी में मौजूद हूँ। आ जाओ, मेरा वादा कि तुम्हें हर लिहाज से खुश कर दिया जाएगा, नॉर्मन ने कहा। ओ अच्छा, गुड न्यूज, मैं अभी पहुँच रही हूँ, दूसरी तरफ से इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा गया। ओके, नॉर्मन ने कहा और रिसीवर रखकर इसने इंटरकॉम पर जेरी को कॉल करके इसे नैन्सी के बारे में बता दिया। और फिर थोड़ी देर बाद नैन्सी जब कमरे में दाखिल हुई तो नॉर्मन बेख्तियार इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर तक इनके दरमियान लाड भरे गिले शिकवे होते रहे, फिर वो दोनों शराब पीने में मसरूफ हो गए कि अचानक नॉर्मन को यूं महसूस होने लगा जैसे इसका जहन किसी लट्टू की तरह चकराने लगा। ये क्या हो रहा है, ये मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है, अचानक नैन्सी ने घबराए हुए लहजे में कहा। ओहो, मेरा भी सर चकरा रहा है कहीं इस शराब में तो, ओहो, नॉर्मन ने कहा। और इसके साथ ही से यूं महसूस हुआ जैसे इसके जहन पर किसी ने सियाह पर्दा फैला दिया हो और इसके साथ ही इसके तमाम एहसासात इस सियाह पर्दे के नीचे गायब हो गए। इमरान की कार वेस्टर्न कॉलोनी में दाखिल हुई तो इसके सारे साथी चौकन्ना होकर सीधे हो गए, क्योंकि इन्हें यही बताया गया था कि नॉर्मन उस लॉर्ड वेस्टर्न कॉलोनी की कोठी नंबर 22 ए में मौजूद है। सफदर तनवीर और कैप्टन शकीर ने स्टून पर काबू पा लिया था, जबकि इसके दूसरे साथी को जो मिसाइल लिए कार हट करने सड़क की तरफ रुक के खड़ा था हलाक कर दिया गया था, फिर स्टून को बेहोश करके वापस वहां ले आया गया जहां इमरान और जूलिया मौजूद थे। इसके बाद इमरान ने मखसूस अंदाज में तशद्दुद करके स्टून से तफसीलात मालूम की तो इसे पता चला कि स्टून ने मखसूस ट्रांसमीटर पर लॉर्ड को इतला देनी थी, जिस पर इमरान ने ट्रांसमीटर टावर पर मौजूद रिचर्ड से राब्ता किया और उसे बताया कि वो स्टून से ट्रांसमीटर कॉल करा रहा है। वो अपनी मखसूस मशीनरी के जरिए इस कॉल का वो स्पॉट ट्रेस करे जहां ये कॉल रिसीव की जाएगी। और फिर इमरान के कहने पर स्टून ने खुद लॉर्ड को ट्रांसमीटर पर कॉल करके इसे बताया कि पाकिस्तानी एजेंटों को खत्म कर दिया गया है, जिस पर लॉर्ड ने بے حد مسرت کا اظہار کیا اور پھر کال ختم ہونے پر عمران کے اشارے پر تنویر نے اسٹون کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کر دیا، کیونکہ عمران نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر اس کی مرضی کے مطابق کال کرے گا تو عمران خود اسے زندہ چھوڑ دے گا۔ پھر رچرڈ نے اسے اطلاع دی کہ اسٹون نے جو کال کی ہے اسے ویسٹرن کالونی کی کوٹھی نمبر 22A میں وصول کیا گیا ہے۔ تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کوٹھی نمبر 22A ٹریس کر لی، لیکن عمران کار آگے بڑھائے لیے گیا کیونکہ اس کوٹھی کے پھاٹک پر ایک کار موجود تھی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے پھاٹک کھلا اور کار اندر چلی گئی اور پھاٹک بند ہو گیا۔ یہ ناول ڈارک فیس کا بقیہ حصہ پارٹ 10 میں سماعت فرمائیں۔